रात गहराती जा रही थी। बगली की दीवारों पर सन्नाटा छाया था, मगर भीतर रिश्तों की आंधी लगातार उठ रही थी। मोनी अपने कमरे में इधर उधर चक्कर काट रही थी। चेहरे पर गुस्से की लालिमा थी और आंखों में जलन। दिन भर रैना को नीचा दिखाने के बावजूद उसके दिल को सुकून नहीं मिला था। उल्टे रैना की चुप्पी और संयम ने जैसे उसकी जीत को अधूरा कर दिया था। वो लड़की हमेशा शांत रहकर भी मुझे हराने की कोशिश करती है, उसने बुदगुदाते हुए अपने हाथ की उंगली चबाई। उसका मन अब और बर्दाश्त करने को तैयार नहीं था। वो सीधे अपनी माँ कमीनी के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाज़ा धकेलते ही उसे वही पुराना आलिशान दृश्य दिखा, आईने में प्रतिबिंब, भारी पर्दे और रेशमी तकियों से सजा पलंग। कमीनी एक किताब पलट रही थी, लेकिन बेटी को देखते ही भांप गई कि उसके भीतर तूफान मचल रहा है। क्या हुआ मोनी, इतनी बेचैन क्यों हो? कमीनी ने किताब बंद कर दी और सीधा बेटी की ओर देखा। मोनी की आंखें भर आईं, वो झटके से पलंग पर बैठ गई और माँ का हाथ पकड़ लिया। माँ, मैं ये सब और नहीं सह सकती। रैना दिन ब दिन अपनी औकात भूलती जा रही है। आज उसने मुझे मुंह तोड़ जवाब देने की कोशिश की, और आप जानती हैं माँ, मैं विक्रम को कैसे अपने पास खींच कर लाई हूँ। लेकिन मुझे डर है कहीं वो रैना के शांत चेहरे और उसकी झूठी मासूमियत में फिर ना फिस जाए। कमीनी की आंखें सिकुड़ गईं, उसने बेटी की ठुड्डी को उठाकर कहा, डर मत विक्रम, अब तेरा है। रैना चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो तेरे सामने टिक ही नहीं सकती। तू मेरी बेटी है और मेरी बेटी हमेशा जीतती है। मोनी की सांसें कुछ धीमी हुईं, मगर दिल का बोझ अभी कम नहीं हुआ था। लेकिन माँ, आज जब मैंने रैना को ताने दिए, उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा। वो नज़र, माँ, उस नज़र में जैसे कोई आग थी। मुझे लगा वो किसी दिन सबके सामने मुझे और आपको बेनकाब कर देगी। कमीनी ने हंसकर बेटी को बाहों में खींच लिया। पगली, वो तेरी तरह चालाक और तेज नहीं है। वो बस बोल सकती है, रो सकती है, मगर कर कुछ नहीं सकती। और अगर उसने जरा भी ऊंची आवाज़ की तो मैं उसे ऐसी जगह पहुंचा दूंगी जहां से वो कभी वापस ना आ सके। मोनी ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से कहा, माँ, मैं विक्रम को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती, चाहे इसके लिए मुझे रैना की जिंदगी बर्बाद क्यों ना करनी पड़े। कमीनी की मुस्कान और चौड़ी हो गई। यही तो मेरी असली बेटी है। याद रख, जब तक मैं जिंदा हूँ तेरा रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। रैना की जुबान अब बहुत चलने लगी है, उसे उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। दोनों माँ बेटी के बीच जैसे कोई काला सौदा तय हो चुका था। कमरे में हवा और भारी हो गई थी। बाहर हवेली की खिड़की से आती रात की ठंडी हवा भी इस साजिश की गर्मी को ठंडा नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद रसोई घर के पास हल्की सी आहट हुई। मोनी और कमीनी दोनों वहां पहुंची। टेबल पर पानी का जग रखा था और कांच के गिलास की चमक मंद रोशनी में झिलमिला रही थी। कमीनी ने गहरी सांस ली और फिर तीखे लहजे में कहा, आजकल यहाँ लोग कितने दिनों से मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं मोनी, और ऊपर से अकड़ भी दिखाते हैं। दूसरों के घर पर रहते हैं और आंखें भी दिखाते हैं। लगता है उन्हें जल्दी ही असली जगह दिखानी पड़ेगी। मोनी ने तुरंत हामी भरी, जैसे उसकी माँ के हर शब्द पर मुहर लगा रही हो। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं ऐसे लोग धरती का बोझ क्यों बने रहते हैं। दूसरों की जिंदगी खराब करने से अच्छा है कि कहीं गायब हो जाएं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि अब तक वो जिंदा कैसे है। दोनों की बातें जहर की तरह फैल रही थीं। रसोई का वातावरण मानो घुटन से भर गया। पानी का जग वहीं रखा रहा, लेकिन उसके आसपास जैसे अंधेरा गहराता चला गया। मोनी ने अपनी माँ के कंधे पर सिर टिकाकर धीरे से कहा, माँ, आप वादा कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, रैना को हमारी राह में कभी आने नहीं देंगी। कमीनी ने उसकी पेट थपथपाई और कहा, ये मेरा वादा है मोनी। अब वो लड़की हमें आंखें दिखाएगी तो उसका अंजाम उसे खुद भी याद नहीं रहेगा। बाहर बंगले के आंगन में हवा तेज चलने लगी थी, जैसे आसमान भी इस आने वाले तूफान का गवाह बन रहा हो। मोनी ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला। उसकी आंखों में फिर वही जुनून लौट आया, विक्रम को पाने का जुनून किसी भी कीमत पर। कमरे की खामोशी में माँ बेटी की हंसी गूंज रही थी, और वो हंसी आने वाले अंधेरे की दस्तक थी। बाहर एक नौकर खड़ा यहाँ सब सुन रहा था। शायद वो उसे सुनने को ये बोली थी कि फिर वो रैना को बताएगा और रैना का दिल दुखी होगा। प्यारे पाठकों के लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, सबसे पहले दिल से शुक्रिया कि आपने मेरी ये नॉवल पढ़ी और इसे इतना प्यार दिया। आपकी मोहब्बत ही मुझे आगे लिखने की हिम्मत देती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरी दूसरी नॉवल ये इश्क बड़ा बेदर्दी है भी उतनी ही पसंद आएगी। ये नॉवल ऐशा और अर्जुन की दास्तान है। जहां एक तरफ ऐशा की मासूमियत और नरमी है, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का खतरनाक और रहस्यमय किरदार। तकदीर इन दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध देती है जिसमें मजबूरी, जुनून और दर्द की गहराई है। क्या नाजुक सी ऐशा अर्जुन जैसे इंसान के साथ अपना रिश्ता निभा पाएगी और क्या अर्जुन के अंधेरे में कभी मोहब्बत की रोशनी जगह बना पाएगी, यही सवाल इस कहानी को और रोमांचक बना देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये इश्क बड़ा बेदर्दी है नहीं पढ़ी तो जरूर एक बार पढ़िए। मुझे भरोसा है ये सफर भी आपको उतना ही बांधेगा जितना मेरी बाकी कहानियां बांधती आई हैं।